ओम शांति। प्यारे बाप दादा जी के भिन्न भिन्न स्थानों से आए हुए आपने मधुबन घर और बाबा के घर में आए हुए, बाबा कहते हैं संगम युग डायमंड युग है, तो डायमंड आत्मा है, क्योंकि संगम युग को डायमंड युग इसीलिए कहा गया कि इस युग में केवल और केवल संगम युग में हमको आत्मा का ज्ञान मिलता है। ये ज्ञान न सतयुग में होता है, न अन्य किसी युग में होता है, न कलयुग में होता है। तो आत्मा का ज्ञान भी मिलता है और आत्मा को कोयले से डायमंड बाबा बनाता है। आपको पता होगा कि कोयला और डायमंड हीरा दोनों एक ही चीज हैं, कार्बन उसको कहते हैं। केवल अगर डायमंड को आप जलाओगे तो कोई भी राख नहीं निकलेगी, ऐश नहीं बचेगा, क्योंकि प्योरेस्ट डायमंड कार्बन होता है। और अन्य किसी प्रकार के कोयले को जलाओगे तो राख निकलेगी। तो बाबा क्या करता है, कलयुगी कोयले से क्या बनाता, सतयुगी सोना बनाता है या संगम युगी डायमंड बनाता है। हाँ, तो कभी भी सतयुग को सबसे बड़ा युग नहीं गिनना। हम कहते ना हमारा लक्ष्य है सतयुग में जाना, श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना, लेकिन सतयुग से भी कोई बड़ी चीज है ना, हो सकती है या नहीं हो सकती, या है? क्योंकि कोई कहे कि पढ़ाई में पीएचडी सबसे बड़ी है, लेकिन पीएचडी को भी कोई पढ़ाने वाला तो होगा, तो उससे बड़ा होगा कि नहीं होगा? इसलिए देवता को देवता बनाने वाला बड़ा हुआ या देवता बड़ा हुआ? अच्छा, देवता बड़े हुए या जिस देवताओं को बनाने वाले ने उससे बड़े बनाया ताकि वो जाके देवता बने? तो बाबा कहते हैं सबसे ऊंचे ब्राह्मण हैं, चोटी है। पहले तो सचमुच चोटी रखते थे, फिर उन्होंने कहा हम चोटी के जीवन तो बताते नहीं, तो चोटी कटवा दी, लेकिन वो तो नकली ब्राह्मण है। तब बाबा कहते हैं कि पहले पहले जो व्यक्ति को अथॉरिटी मिलती है, अथॉरिटी क्या मिलती है, कोई भी व्यक्ति है उसको जो अथॉरिटी मिलती है उसी के अनुसार वो काम करता है ना, दुनिया में भी ऐसे ही है। लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी जिसको देने वाला भी सबसे बड़ी अथॉरिटियों की अथॉरिटी, होलीएस्ट ऑफ होली, हाईएस्ट ऑफ हाई, रिचेस्ट ऑफ रिचेस्ट रिच, तो बाबा कहता वो है हमारा पिता। तो हमारी अथॉरिटी कहां से पैदा होती है, तो साधारण मनुष्यों की नहीं है, है ना। दुनिया में भी होता है, कोई बिजनेसमैन बन गया बड़ी अथॉरिटी है, कोई अच्छा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया। तो बाबा कहते हैं कि वो भी अथॉरिटी होता है, आप छोटे डॉक्टर से इलाज कराना नहीं चाहते, बहुत बड़ा कोई बीमारी हो जाए तो क्या कहते हैं, ऐसा डॉक्टर ढूंढो जो अच्छी तरह से अनुभवी हो। अच्छा, अब अनुभवी और बिना अनुभवी में पढ़ा लिखा बहुत अनुभव नहीं है तो क्या होगा, नीम हकीम खतरा जान। आप जीवन में देखिए अनुभवी और कम अनुभवी में क्या फर्क है। एक नया युगल नया अपना घर बना रहा और मार्केट में जाके एक चाय का बहुत महंगा चाय पिलाने का सेट खरीद लाता, कि भाई अपना घर बनाना है, बहुत बढ़िया क्रॉकरी खरीद लाता। घर में आकर बच्चा, उनका ही बच्चा एक कप तोड़ देता पहले, तो क्या हो गया, युगल क्या करेगा है? मान लो 1,00,000 रुपए का क्रॉकरी का सेट लाए, अभी घर में रखा है, बच्चे ने कप तोड़ दिया, तो क्या करेंगे है? शाबाश करेंगे, उसको टोली देंगे या क्या करेंगे है? है अपना ही बच्चा, लेकिन क्या करेंगे, उनको 1,00,000 दिखेगा हमारा नुकसान हो गया, तो उसको जो भी आप समझ सकते हैं क्या करेंगे। अच्छा, जब वो उस प्रकार से उसको कर रहे हैं तो दूसरे कमरे से बच्चे का दादाजी निकलते हैं, वो देखते हैं तो दादाजी क्या बोलेंगे हैं? क्या बोलेंगे, क्यों इस बेचारे को ऐसे कर रहा है? वो फिर बोलेंगे ऐसे हुआ हमारा ये किया। फिर दादाजी कह रहे छोड़ो ना, बच्चा है, तो फर्क क्या है कि उसको अनुभव है, उसने इस प्रकार के अनेक टूटते हुए कप देखे और उन बेचारों ने पहली बार देखा। इसलिए जो अनुभव होता है उसका फायदा क्या है कि वो आपको अचल और अडोल बनाता है। यूं तो हमें ज्ञान भी अचल और अडोल बनाता है। ऐसा कौन सा ज्ञान है जो आपको हर वक्त अटल और अडोल रख सकता है? किस चीज का ज्ञान है? बिल्कुल ठीक, ड्रामा का ज्ञान। ड्रामा का ज्ञान इतना बाबा ने फर्स्ट क्लास दिया हुआ है कि आप बिल्कुल अचल और अडोल रह सकते हैं। क्यों? कि अगर कप तोड़ भी दिया तो अगले कलम में फिर वो कप आएगा, है ना? अच्छा, कहां से आएगा वो अभी आपको सोचना है, तो इसलिए कुछ टूटा नहीं है। तब बाबा कहता है कि लेकिन एक है ज्ञान और एक है अनुभव, तो ज्ञान और अनुभव में फर्क की कॉमन मिसाल बाबा ने अनेक मुरलियों में दी है, और वो क्या है, गंगा राम नल पर नहीं बैठना, है ना? है ना, ये गंगा राम नल पर बैठा है और क्या कह रहा है, गंगा राम नल पर नहीं बैठना। तो ऐसे ही ड्रामा भी बोलते जाएंगे और डरते भी रहेंगे, कांपते भी रहेंगे, वो सामने कुछ आ गया है। तो मान लो इस कॉन्फ्रेंस हॉल में सांप निकले हुए काला, मैंने सुना है कल से काला सांप यहां छिपा हुआ है। अच्छा, निकले आवे तो आप क्या करोगे, कहोगे ड्रामा है, बैठ जाओगे कि ठीक है ड्रामा में होगा तो मुझे कुछ कहेगा वरना चले जाएगा या कुछ होगा, होगा कि क्या कहेंगे? क्योंकि वो बेचारा हर एक के साथ तो उसका अपॉइंटमेंट नहीं है, एक दो के साथ होगा, जिसके साथ होगा उसके पास जाएगा, आपके पास तो आएगा नहीं, आपको क्या चिंता। और अगर आपके साथ है तो आ जाए तो भी कोई चिंता नहीं। लेकिन अब इसलिए अनुभव की जरूरत है, अगर अनुभव नहीं होगा तो जरूर धोखा खाएंगे। एक महात्मा जी थे, तो महात्मा जी ने नया नया एक चेला रख लिया, बड़ा एक्टिव था, तो रख लिया। तो बोले कल सुबह हमने नदी के पार जाना है, दूसरे गांव में सत्संग है। तो चेला सुबह सुबह तैयार हो गया है, नया चेला जो होता है जल्दी तैयार होता है, आप जानते हैं। अच्छा, तो देखता रहा महात्मा जी को, तो महात्मा जी भी तैयार हुए। तो चेले ने सोचा कि रास्ते में तो नदी पड़ती है और कश्ती वाले को पैसे देने पड़ते हैं, महात्मा जी ने तो पैसे रखे ही नहीं है, क्या होगा। तो चेले ने अपने लंगोटी में पैसे रख लिए और जब नदी के पास गए तो चेला आगे आगे गया क्योंकि एक्टिव था। तो उस कश्ती वाले को बोला कितने पैसे क्रॉस करने के, उसने कहा दी 1 रुपया। तो कहता ये लो 2 रुपए, आओ महात्मा जी, उसको बिठा के ले गया। अब नदी के बीच में जाके बोला महात्मा जी ये तो मैं था जिसने पैसे रख लिए, वरना आपको तो इंसल्ट हो जाता आपका वो है। तो महात्मा जी मुस्कुराए, बोले बेटा आज तक तो वो मुझे फ्री ले जाता था, अब रोज पैसे लेगा, समझा आपने। तो ये है फर्क अनुभव और अनुभव का। इसलिए खास अनुभव के अथॉरिटी बनने की अब जरूरत है। जब बच्चे माता पिता के पालते हैं माता पिता, तो बच्चे को कोई चिंता नहीं होती, ठीक है जरा सी दिक्कत होगी तो माता के पास चले गए जाएगा, पिता के पास ये चाहिए, जैसे ATM होता है कि नहीं, ये दे दो बस, उनको कोई चिंता नहीं। लेकिन जब बड़े हो जाएं और माता पिता कहें भी अपने पांव पर खड़े हो, तो फिर उनको अनुभव चाहिए। इसी तरह से बाबा कहते हैं कि मैं अब तक तो बच्चों की पालना कर रहा हूं, कुछ भी हो, बाबा ने कहा सच्चे दिल से बाबा कहो, बाबा आ जाएगा, और है भी ऐसा। फिर बाबा रोज हमें ज्ञान का इंजेक्शन भी लगाता है, तो कुछ ना कुछ धूल मिट्टी होती है आत्मा पर निकल जाती है। और संगठन है हमारा, अभी हम स्टूडेंट हैं, लेकिन बाबा ने क्या कह रखा है कि मैंने आपको अपने सारे खजाने दे दिए, सतयुग में मैं तुम्हारे साथ नहीं होना, ठीक है, तो सतयुग में आपको क्या काम आएगा, चले भी जाओ, चले तो जाएंगे सतयुग में, लेकिन सतयुग भी तो छोटा मोटा नहीं है ना, कहां सतयुग का पहले जन्म का अच्छा पद, कहां, चलो त्रेता छोड़ भी दो, सतयुग के लास्ट जन्म का लास्ट पद फर्क है। अच्छा, कौन चाहेगा, अगर पूछा जाए तो कौन चाहेगा कि मुझे कौन सा पद मिले, सबसे पूछेंगे तो क्या कहेंगे, हाँ? त्रेता में तो जाना ही नहीं चाहेंगे, सतयुग का भी लास्ट राजा ही भी पसंद नहीं है, फर्स्ट चाहिए, ठीक है ना। अब बाबा कहता है कि उसके लिए क्या चाहिए फिर, अनुभव की अथॉरिटी। तो अगर अनुभव की अथॉरिटी कम होगी तो पद कम हो जाएगा, अगर बहुत कम होगी तो जन्म कम हो जाएंगे। और बाबा ने कह रखा है कि जो गेंगे कहते हैं ना, कर लेंगे, हो जाएगा, बाबा चिंता नहीं करो, बस हम तैयार ही हैं। तो बाबा कहते हैं गे जिस दिन गे की जगह हुआ कहोगे उस दिन से आपकी एंट्री होगी, बाकी बाबा भी वो कहते हम देख लेंगे, बाबा कहता मैं भी देख लूंगा, गा है ना सीधा सीधा साहब। तो अभी तो बाबा प्यार से याद प्यार नमस्ते करते हैं, लेकिन आप गौर से पढ़ो तो हर याद प्यार में क्या होता है, कुछ कंडीशन होती है। जो बाबा ने शिक्षा दी उसमें कहा, बाबा क्या कहते हैं, ऐसे ये 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 करने वालों को याद प्यार और नमस्ते, बाकियों को छुट्टी। इसलिए बाबा तो कह जाता है तो हम समझते हमें भी मिल गया याद प्यार, नहीं। इसलिए अब बाबा कहता है कि मैंने आपको इतना दिया है, इतना दिया है कि अगर आप उसको याद ही कर लो तो आपको नशा चढ़ जाए। सामने किसी के उसकी ज्वेलरी वगैरह रख दो, कितना नशा चढ़ जाता है। और आजकल नशा इसीलिए नहीं चढ़ता कि लोग बैंक ट्रांसफर करते हैं, हाथ में पैसा आता ही नहीं है ना, कागज का चेक दे दिया या बैंक ट्रांसफर, बाहर में एक बोर्ड लगा हुआ पैसे इस तरह जमा कराने हैं। मैं पूछ रहा था ये क्या है। अच्छा, तो आगे हमने भी 17 साल जॉब किया है, उसमें भी होता था चेक ले लो, मैंने कभी चेक नहीं लिया। मैंने कहा एक बारी तो पैसे हाथ में देख लूं तो उसकी खुशी होती, उसके बाद बड़े बैंक में जमा कराओ। तो अब क्या है कि बाबा कहते आपकी प्रॉपर्टी लॉकर में है, पिता के रूप में। पिता के रूप में क्या मिला है? हमारा पिता भी कौन है? हमारा पिता देखा जाए ऐसा कोई पिता है? पिताओं का पिता, सबका गुरुओं का गुरु, और इतना जिसको कहते हैं हर चीज देने वाला। तो पिता जिसका भाग्य विधाता हो, जितनी मर्जी किस्मत लिख दो, उसने सबका भाग्य लिख दिया कि सारी कोर्टों में कोई होकर मेरे पास आ जाओ, मेरे बच्चे बन जाओ। खुद किस्मत लिखने वाला जिसका बाप हो, किसी का बाप थानेदार भी हो, वो भी नहीं डरता कि मेरा बाप थानेदार है, और ये तो परम पिता है। और फिर कहता ऐसा गुरु, ऐसा टीचर देखा है। दुनिया में पढ़ाइयां बहुत हैं, लेकिन ऐसा टीचर जो आपको तीनों कालों तीनों लोकों की पढ़ाई ऐसे पढ़ा दे जो आप बच्चा भी बोल सके, परम धाम कहाँ है? मैं बताता हूँ। सतयुग में क्या था मैं बताता हूँ। आपके पास बाबा ने हमको त्रिकालदर्शी मास्टर बना दिया, और फिर दुनिया में कोई पढ़ाई नहीं है जिससे आप राजा बन जाओ। कोई भी पढ़ाई पढ़ लोगे आप राजा नहीं बन सकते, प्राइम मिनिस्टर बन सकते। बाबा की मुरलियों में आता है, इंग्लैंड का एक प्राइम मिनिस्टर था, वो लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ता था, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। राजा नहीं बन सकता। ये हो सकता है कि राजकुमार पढ़े जाके, मुरली में आता ना कृष्ण जाके पढ़ता था, और राजकुमारों का कॉलेज भी होता है, लेकिन राजा पढ़ाई से नहीं बन सकता। और बाबा की पढ़ाई से राजा बनते हैं, 21 पीढ़ी राजा बनते हैं। यहां भी राजा, इंद्रियों के राजा। अच्छा, फिर सतगुरु वो क्या करता है? बाप ही एक ही है वो, लेकिन करता क्या है? सतगुरु श्रीमत देता है, वरदान देता है। अब श्रीमत से बढ़िया मत तो है नहीं दुनिया में। अच्छा, और वरदान का मतलब होता है आपको कुछ नहीं करना, और हर चीज में आपको करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। बाप है तो बेटे का रोल निभाना पड़ेगा, टीचर है तो स्टूडेंट बनना। वरदान में कुछ भी नहीं है, सीधा ही। अच्छा, इसलिए वरदाता, केवल क्या है कि उस वरदान को यूज करना है और उस वरदान को मिस यूज नहीं करना, नहीं तो श्राप बन जाता। तो कहने का भाव है, हम सब जानते हैं पिता, फिर शिक्षक, फिर सतगुरु, अन्य भी सारे संबंध, इतनी प्राप्ति कराने वाला। अब बाबा कहते वो प्राप्ति है कहाँ? है तो कहीं तो है ना, चलो कहीं ने थोड़ी बहुत कम कर दी होगी। बाबा कहते मैं तो पूरी जेब भर देता हूँ, अब उसमें से कितना आपका खिसक जाए वो आपके हाथ में। मैं किसी को ये नहीं कहता थोड़ा देना है, पहले फुल ले लो। अब जेब भर दी तो फिर क्या होता है, उसमें से खिसकता कैसे है? सिर्फ बाबा ने बताया, वो बहुत आसान बात है। मैं कहां श्रीमत, कहां मेरी मत, और कहां परमात्मा ने हमको कौन सी सीट पे बिठाया है, हैं? काहे की सीट पे बिठाया? काहे की सीट पे बिठाया? सोमान की सीट पे बिठाया। सोमान का मतलब होता है जो आपकी प्रॉपर्टी है उसका आपको नशा हो, तो राजा की सीट पर बैठता उसको पता है मैं राजा हूं, वो कभी भूलता नहीं है। ऐसे नहीं कि सीट पर ही राजा है, चले फिरेगा तो भी राजा है। तो बाबा कहते हैं मैंने आपको पहले कहा हुआ है कि अपनी सीट पर रहोगे तो आपको उसकी अथॉरिटी रहेगी, सीट से हटे अथॉरिटी भूल गई है, भूल जाएगी। अब आप बताओ कि सीट पे सेट रह के अर्थात स्थिति में रह करके, सीट कोई कुर्सी नहीं है, अपनी स्थिति में रह करके चलते हैं, वो सारी चीजें याद रखते हैं, हम ऑलमाइटी की संतान हैं, इतने हमें वरदान मिले हैं, इतनी हमें शिक्षा मिली है, इतने हमें सौभाग्य मिला है, ये खाली चलते हैं, वो क्या होता है, मैं इस सेंटर का इंचार्ज हूं, मैं इस सेंटर का स्टूडेंट हूं, और मैं फिर लौकिक प्रॉपर्टी, मेरे पास इतने पैसे हैं, इतने साधन हैं आदि आदि, ये मेरी जिम्मेवारियां, ये कोई सुमान की सीट थोड़ी है, भगवान ने आपको कौन सी सीट दी, तो मैं आ गई। अब बाबा कहता है मैं के अंदर भी हमको सिखाया है कि बाबा ने कि मैं और मेरा, ये जो मैं और मेरा है, एक तो मोटे रूप का है जो हम सबको पता है कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, देह से न्यारा। फिर बाबा कहते हैं देह के पदार्थों से न्यारा कि मैं कार नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अच्छा, देह की वस्तुओं से न्यारा, देह के संबंधों से न्यारा, मैं इसका चाचा हूं, इसका मामा हूं। अच्छा, संस्कारों, पुराने संस्कारों से भी न्यारा, स्वभाव से भी न्यारा। बाबा कहते ये तो छोटा है, ये मैं सबको पता है और इसको छोड़ते भी रहते हैं, कहीं इसको भी नहीं छोड़े हुए, लेकिन जो खतरनाक मैं है, जो आपकी सारी प्रॉपर्टी को, उसके पास डुप्लीकेट चाबी है, वो क्या है, वो बाबा कहता है ये तो सब पुरानी चीजों वाली मैं है, मेरा शरीर पुराना, मेरे संबंध पुराने, मेरे संस्कार पुराने, मेरी आसक्तियां मान लो इस वस्तु से पुरानी, दुनिया की पुरानी। लेकिन वो बहुत ही खतरनाक है, सूक्ष्म है। वो क्या है, जो बाबा ने के ज्ञान में आने के बाद बाबा ने हमको दिया, उसका मैं। बाबा कहते तुम निमित हो, ब्रह्मा बाबा भी निमित है, ब्रह्मा बाबा ने कभी मैं शब्द यूज नहीं किया, बाबा बाबा कहा, प्रकाशमणि दादी जी ने कभी मैं शब्द यूज नहीं किया, दादी दादी कहा। तो वो मैं के, मान लो मैं स्टूडेंट हूं, मैं सेंटर के सभी स्टूडेंट में होशियार स्टूडेंट हूं, या मैं सेंटर के भी सभी स्टूडेंट में ज्यादा धन सहयोग देने वाला स्टूडेंट हूं, कुछ भी है, वो मैं कि मेरी विशेषता, इसका मतलब मैं पहले दूसरों से कंपेयर कर रहा हूं, फिर अपने को सेट कर रहा हूं कि ये क्या सहयोग देते हैं, मैं अकेला ही इतना दे देता हूं, मेरे तो भाषण सब पसंद करते हैं, मेरी दिमाग जैसा, बहन जी ने कहा प्रोग्राम बनाओ, मेरे जैसा दिमाग ही किसी का नहीं, जो मैं कहता हूं वही होना चाहिए। ये जो सारी मैं है, बाबा कहता है ये बहुत खतरनाक है। भगवान ने हमें निमित्त बनाया, निमित्त शब्द है, अगर कुछ हमें मिला भी, हमारे पास चलो था भी, बाबा ने यूज कर लिया, तो हमारा भाग्य है, क्योंकि ईश्वरीय कार्य में लगना भी भाग्य है हमारा। मान लो आप इस हॉल में बैठे हैं, आपका हॉल में बैठना भी बहुत बड़ा भाग्य है, किसी दिन आप याद करोगे अरे हम हॉल में बैठे थे, जैसे हम अब याद करते हैं अरे हम ब्रह्मा बाबा के साथ गद्दी पर बैठते थे, हैं? अगर पता होता तो और अटेंशन से बैठते, है ना, अब याद करते हैं। ऐसे ही अभी आप बैठे हो, कॉन्फ्रेंस हॉल है, हम आ गए, भट्टी कर ली, ना डेट याद ना कुछ, तो दूसरी भट्टी करेंगे फिर, नहीं, इसका महत्व कितना है। तो बाबा कहता है प्रभु प्रसाद, प्रसाद किसी की अपनी चीज नहीं होती, प्रसाद को तो लोग बांटते हैं थोड़ा थोड़ा करके, धरती पे गिर जाए तो माथे से लगाते हैं। तो जितनी भी हमारी प्राप्तियां हैं, चाहे हम टीचर हैं चाहे हम स्टूडेंट हैं, सारी दुनिया के लोग स्टूडेंट भी नहीं बन सकते, घर के पास सेंटर नहीं होता, बेचारे कहीं ऐसी जगह चले जाते तड़पते हैं, अरे सेंटर था तो मैं आलस करता रहा, अब मैं कितनी दूर हूं, अगर मुझे दोबारा सेंटर मिल जाए मैं रोज सबसे पहले जाके बैठा हूं, ये बाद में पछताते हैं। इसलिए बाबा कहता है कि कोई भी हमको जो बाबा के पास आने के बाद सम्मान प्राप्त हुआ, विशेषता प्राप्त हुई, कोई चांस प्राप्त हुआ, वो उसमें मैं नहीं लगानी। बाबा कहते तुम अपनी चीज को भगवान के समर्पण करो, और हम भगवान की चीज को अपने समर्पण कर रहे हैं। ज्ञान सुनाएंगे तो कहेंगे आपने बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया, बाबा का परिचय नहीं उसमें, अगली बारी वो कहेगा उस टीचर को बुलाओ वो उसने मुझे ठीक समझाया था। तो बाबा कहते ये क्या है। तो इसी वास्ते ज्ञान लेने वाले लाखों, अच्छा माला में आने वाले कितने, 9 लाख की माला में भी बहुत पहले पहले जन्म में बहुत कम, और फिर पहला और 9 लाख में कितना फर्क है, लगते दोनों पास पास हैं, पहला और 9 लाख वाला साथ ही होगा, लेकिन एक होगा अलबेले पल वाला और एक होगा केयरफुल वाला, होंगे इकट्ठे, नंबर में फर्क। इसलिए धोखा भी खाते हैं, बाबा कहते ना बेफिक्र बादशाह अलबेले रहो, हो गया बेफिक्र बादशाह, है ना, लेकिन वो अलबेले बन वाला बादशाह का नंबर लगेगा ऐसे, अंदर से उसको खुशी नहीं होगी। इसलिए ये मैं आपको त्यागनी है। अगर आप, क्योंकि अनुभव किस चीज का करना है, नकली का या असली का, अगर आपने ये मैं वाला अनुभव किया कुछ ना कुछ टेम्परेरी आपको मान भी मिल जाएगा चलाकी का, लेकिन बाबा कहते हैं अंदर का कुछ नहीं। इसलिए बाबा कहता है सच्ची दिल, दिल भी कई तरह की होती है, सेवा भी कई तरह की होती है, मजबूरी की, दिखावे की हैं, और आदि सच्ची एक दिल की। तो इसकी निशानी बाबा कहता है अगर आपने अनुभव की अथॉरिटी बनना है तो क्या करना पड़ेगा। कोई कहे कि मैंने अनुभव की अथॉरिटी बनना है, मुझे विदेश का पासपोर्ट बनवा दो और टिकट ले दो ताकि मैं चक्रवर्ती बन के सारी दुनिया का चक्कर लगाऊं तो मैं अनुभव की अथॉरिटी बन गया। इसको अनुभव की अथॉरिटी नहीं कहते, चक्कर लगाने वाले भी चक्कर में आ जाते हैं, ये हम आपको बता दें। अनुभव की अथॉरिटी का मतलब ये है कि आप काम कुछ भी करो, कोई भी काम करो, साधारण काम करो, लेकिन साधारण में अलौकिकता होनी चाहिए। अनुभव हमें अलौकिकता से आएगा, और कोई भी कार्य करते हुए हम सब कुछ सीख जाएंगे। बाबा ने कहा हुआ है चाहे आप बर्तन मांज लो चाहे भाषण कर लो, बराबर है, आपकी स्थिति होनी चाहिए कि आप किसके यज्ञ में बर्तन मांज रहे हो, किसके यज्ञ में भाषण कर रहे हो। ना भाषण का नशा होना चाहिए, ना बर्तन मांजने के लिए गिलानी होनी चाहिए कि ये भी कोई काम है। अब मैं आपको अपना एक अनुभव सुनाता हूं। बहुत साल पहले दादी प्रकाशमणि जी को विदेश जाना था, उस समय थोड़े से स्टूडेंट होते थे, ऊपर पांडव भवन में शांति स्तंभ के आसपास एक बैठने की जगह बनी हुई है, आपको पता है, उसमें भाई बहन बैठे थे और दादी जी को उनको दृष्टि देके विदाई लेनी थी। मैं उन दिनों ऑफिसर था कंपनी में, सूटेड बूटेड, तो मैं भी वहां आया हुआ था, तो मैं अपने जूता उतार रहा था शांति स्तंभ के पास कि मैं वहां जाता हूं। अचानक दादी जी आए और मुझे कहा, वो टोली की थाली थी तो किसी ने पकड़, ब्रिजमोहन तुम ये पकड़ लो ले चलो। لو جی سیکنڈ کے لیے میرے من میں آیا, میں آفیسر, یہ تھالی پکڑنی ہے نا, میں کیوں پکڑوں. اچھا میرے من میں آیا, کسی کو پتا نہیں, میرے کو اتنے زور سے بجلی کا جھٹکا لگا ایسے کہ میں نے وہ تھالی پکڑ لی, کٹ پتلی کی طرح پکڑ لی. اچھا اس کے بعد دادی جی ایک ایک سے ملتے گئے, میں تو تھالی پکڑے ہوئے تھا, بس ملتے گئے پورا ہو گیا. اس کے بعد مجھے اتنا ہلکا پن لگا, اتنی خوشی لگی. اور خالی میں تو دادی ایسے ڈسٹری دے رہی تھی, ٹولی دے رہی تھی. میں نے سوچا اگر میں یہ چانس مس کرتا, مجھے کتنا یہ انوبھو تو ہوتا ہی نہیں الوکتا کا. اور میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے جھٹکا لگا, اگر نہ لگتا وہ کوئی میرا بھاگی ہوگا پرانا. اس لیے میں نے کہا کہ جو الوکک آنند ہے وہ آپ کو یگ کے کسی بھی کام میں مل سکتا ہے, اور اس الوکتا سے آپ ونچت بھی ہو سکتے ہو. بڑے سے بڑا آپ کو بھگوان کے نزدیک بٹھا دے تو ونچت بھی ہو سکتے ہو, اور دور بیٹھے ہوئے آپ پا بھی سکتے ہو. تو اس کا سار یہ ہے, اگر آپ نے انبھو کرنا ہے تو پہلے الوکتا کا انبھو کریں. سنگم یوگ کی خاص وشیشتا ہے الوکک, باقی سب ہیں لوکک. ہمارا جنم بھی الوکک ہے, ہمارا بی کے ٹائٹل بھی الوکک ہے, اور ہمارا سارا یگے کا سسٹم بھی الوکک ہے. تو بھگوان کہتا ہے میں بھی پرلوک سے سوکشم روپ میں آتا ہوں. الوکک کا کیا مطلب ہوتا ہے, نہ اس لوک کا نہ اس لوک کا, بیچ والا. تو کیول سنگم پر ہم الوکک ہیں. اب ہمارا پریوار یہ جو ہے, یہ پریوار لوکک ہے کیا؟ نہیں. پر لوکک ہے کیا؟ وہاں تو آتمائیں ہوں گی, الوکک ہے. تو ہماری دنچریا, ہمارا ہر چیز الوکک ہے. بھوجن تو سارے کرتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں آ کے ایسا بھوجن تو ہم نے کبھی کیا ہی نہیں, آپ اس میں کیا ڈالتے ہو؟ ہم تو ڈالتے کچھ نہیں, ہم تو پیاز پوج نہیں ڈال نکالتے ہیں, پیار ڈالتے ہیں اس میں, پریم. تو وہ جو پریم ہے وہ الوکک ہے. کون سا پریم ہے؟ روحانی پریم ہے, جس کو روحانی کہتے ہیں. تو الوکک مینز روحانی. جتنا ہم روحانی بن سکیں, تو روحانی والے کو کبھی اترپتی نہیں ہوگی, کبھی اسنتشتتا نہیں ہوگی, جس کو کہتے اپراپت کوئی وستو نہیں, کبھی اس کو اسرکشا نہیں ہوگی کہ میرا کیا ہوگا, کبھی وہ سنسارک چیزیں اکٹھی کرنے کی اچھا ہی نہیں رکھے گا. اس کو پتا الوکک کا بھگوان پہ وشواس ہے. جو لوکک اکٹھا کر کے پھر کہتے میرا سب ٹھیک ہے, وہ بھگوان پہ وشواس نہیں ہے, سادھنوں پہ وشواس ہے. باقی بائی دی وے سادھنوں کے آدھار پر زندہ ہے, وہ الوکک نہیں ہے. بابا کہتا ہے آپ کے سادھن تو پرچھائی ہے. جس کو سرو پراپتی سمپن کہتے ہیں, اس کے لیے یہ دھن مکان اتیادی پرچھائی ہے. ہم نے برہما کماری کا وہ روپ دیکھا ہے جب برہما کماری کو کوئی کرائے کا مکان بھی نہیں دیتا تھا, وہ بھی دیکھا. دادی پرکاش منی سائیکل پہ پرچے چھپوانے جاتی تھی, دادی جان کی پیدل متھرا میں ایک راجا سے کرایہ چھڑوانا تھا جاتی تھی. اور آج وہ روپ بھی آپ سب جانتے ہیں کہ ہر بہن, ہر سینٹر سادھن سمپن ہے, ہر ایک کے پاس اچھے اچھے بابا نے سیوا اسٹوڈینٹ بھیجے ہوئے ہیں, چلا تو بابا ہی رہا. اب بابا پالنا کر رہا ہے, اچھی بھگوان کی پالنا ہے. اور میں سوچوں کہ یہ اسٹوڈینٹ میرا اچھا سہیوگی ہے, یہی میری پالنا کر رہا ہے, اور اگر وہ اسٹوڈینٹ کی ٹرانسفر ہو جائے تو میں سوچوں کہ اب میری پالنا کون کرے گا, میرا سینٹر کون چلائے گا, اس کو کیا کہیں گے, الوکک یا الوکک. اس لیے بابا کہتا ہے کہ اگر آپ الوکک رہیں گے تو آپ کو سنگٹھن میں سب سے مشکل آتی ہے, سنگٹھن میں رہنے کی. یہ سنگٹھن میں رہتے ہیں نا تو بھیڑ ہوتی ہے, کوئی کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہو کہ اکیلے ہی رہو, کم اسٹوڈینٹ آئیں گے تو کم بھیڑ ہوگی, آرام سے رہو گے. نہیں, سنگٹھن میں ایزی الوکک رہ سکتا فرشتہ. آپ فرشتہ ہیں تو آپ کو بھیڑ لگے گی نہیں. تو اگر آپ شریر میں فرشتہ بن کے بیٹھ جاؤ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. جو ہی آپ باڈی میں آؤ گے अरे इतनी भीड़ है, इतनी गर्मी है, ये खाने की लाइन लगी हुई है, ये सारा लगेगा। तो इस और फरिश्ता हो गए तो आपको मजा आएगा। और आप देख लीजिए, दो जने बाथरूम की तरफ जा रहे हैं। अब एक सोचता है कि मैं जरा सा जल्दी जाके मैं चले जाऊं, होता है ना ऐसे। और एक सोचता है कि नहीं, इसको जाने दो, कट्ठे भी चले जाएं, वो कहे भाई साहब आप पहले चले जाओ। उसमें जिसने भेजा उसको जो खुशी होगी, उसको जो हल्कापन आएगा, वो जाने वाले को नहीं आएगा। क्योंकि अलौकिक का चाबी है देना। अगर आपने अलौकिक बनना है तो देना इसकी चाबी है। कहीं भी आप देंगे तो आपको हल्कापन आ जाएगा, और लेने की कोशिश करेंगे मिल जाएगा, भारीपन आ जाएगा। तो आपने हल्के बनना या भारी। बाबा कहता है, शिव बाबा है बिंदु, ब्रह्मा बाबा है फरिश्ता। उनके पास, दोनों के पास लौकिक कुछ नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने यहां भी लौकिक नहीं रखा। बोलते थे ये मकान नया बन रहा है, बच्चों के लिए बन रहा है, मुझे क्या चाहिए, मैं तो ओल्ड हूं। तो उसी कारण से वो फरिश्ता हो गया। आप कोई भी लौकिक चीज ले लोगे और आप फरिश्ता हो तो आप तो नीचे आ जाओगे। वो परी जो ले गई थी इंद्रप्रस्थ में, उसको नीचे भेज दिया, ये तो मनुष्य है साथ में। इसलिए हमें मनुष्य ना बनना है, हमें बनना है देवता। तो आप देखेंगे देने में खुशी है। तो बाबा रोज कहता है कि बच्चे जो प्राप्तियां हुई हैं उसकी लिस्ट तो बहुत है। एक तो अपनी प्राप्तियों को रिवाइज करो, सुबह रिवाइज कर लो कि हम ये हैं, हम इस दुनिया के शहनशाहों में सबसे बड़े हैं, हम इस दुनिया के डॉक्टरों में सबसे बड़े हैं, एक एक बाबा का बच्चा राजा है, हम इस दुनिया के हर एक से बड़े हैं, भले हम निमित्त हैं, क्योंकि इस दुनिया में हम चोरों की दुनिया में, जेब कतरों की दुनिया में हम अपना धन नहीं दिखाना चाहते। कई मुरलियों में बाबा ने कहा है कि राजा लोग जब कोई विपदा आती थी तो बड़े राजा के पास जमा करा देते थे, या जंगल से क्रॉस करते थे तो सेफ्टी रखते थे। तो जंगल में आप अपनी चीज दिखाओगे तो आपको ठग लेगा कोई, यहां गुप्त रहना अच्छा है। लेकिन बाबा कहता है यहां उड़ाना, खत्म कर देना और वहां इकट्ठा कर लेना, यही देवताओं का काम है। जैसे किसी चीज का आप अतर बनाते हैं तो क्या करते हैं, यहां से उसको भाप बना देते हैं, वहां जाके उसको जमा कर लेते हैं, तो सार उसमें आ जाता है, खराबी निकल जाती है। यही बाबा का ज्ञान है। तो इसलिए हमें दो बातें याद रखनी, कभी लेने का ख्याल नहीं करना, चाहे वो आपका भाई है या स्टूडेंट है या कहीं भी कहीं एडवांटेज मिल रहा है ना। मान लो एक एक गिलास दूध मिल रहा है तो मैं सोचू डेढ़ पी लू तो अच्छा है, फ्री मिल रहा है ना, वो गड़बड़ है। तो पौना पीऊं तो अच्छा है कि कोई और को फायदा हो जाए। एक था राजा, तो वो राजा जो था 50 साल का हो गया, तो उसको किसी ने कहा कि महाराज आप शरीर छोड़ दोगे, बाद में तो लोग दान कर ही देते हैं, आप अपने जीते जी आपका इतना धन है प्रजा को दान कर दो। वो मान गया, कहता रोज ठीक है 10 बजे से 2 बजे तक प्रजा आ जाए, उसने थैलियां बना ली धन की, मैं देता जाऊंगा। एक फकीर था उस शहर में मांगने वाला, वो भी लाइन में लगा हुआ था, तो राजा थैली देता जाता था। जब फकीर का टर्न आया, बड़ी दूर था, काफी समय बाद टर्न आया, तो फकीर ने थैली नहीं ली, दोबारा जाके लाइन में लग गया। 3-4 बार ऐसा हुआ तो उसके सारे शहर में मशहूरी हो गई कि एक फकीर है, बड़ी मेहनत करके उसकी टर्न आती है, फिर वो टर्न छोड़कर अगले को देके फिर लाइन में लग जाता। उसकी इतनी मशहूरी हो गई कि राजा को ईर्ष्या हो गई कि धन मैं बांट रहा हूं और इतनी मशहूरी उस फकीर की हो रही है। उसने उसको बुलाया कि देखो 3-4 थैली ले लो जितनी लेनी है, पर ये मत करो ये जो तुम कर रहे हो। उसने कहा हजूर मैं वहां खड़ा था, मैंने देखा जब आप थैली देते हैं आपको खुशी होती है, जब आप थैली देते हैं आप मुस्कुराते हैं, तो मैंने सोचा देने में खुशी है, अब मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो मैं अपनी टर्न दे देता हूं, मुझे खुशी मिल जाती, समझा आपने। तो कहने का भाव क्या हुआ, तो सचमुच आप देख लीजिए, आप देने वाले का हाथ ऊपर, लेने वाले का हाथ नीचे, तो देवता का मतलब क्या है। तो भगवान कहता है कि अगर देने में खुशी है तो जितना ज्यादा दोगे उतनी ज्यादा खुशी होगी कि नहीं होगी, नॉर्मल तो आप देते ही हो, संगम युग का मतलब है एक्स्ट्रा, संगम युग के साथ आप एक्स्ट्रा शब्द लगा लो कि अगर एक्स्ट्रा है तो खुशी है, नॉर्मल में खुशी नहीं है। अच्छा बताइए कि खुशी और सुख में क्या फर्क है, खुशी और सुख में क्या फर्क है, हाँ? खुशी भाई लोग बोल रहे हैं, बहन जी बताओ खुशी और सुख में क्या फर्क है, चलो आपका टाइम ना जाए, खुशी किस युग में होती है और सुख किस युग में होता है आपको पता लग जाएगा। सतयुग में देवताओं को खुशी होती है या सुख होता है या दोनों होते हैं, हाँ? देवताओं को खुशी नहीं होती क्या? सारी सभा में जो समझते हैं कि देवताओं को खुशी होती है हाथ उठाओ, देखो ये इतने सबसे होशियार स्टूडेंट पीछे बैठे हैं, ये एक दो आगे भी बैठे हैं, ठीक है। देवताओं को किस चीज की खुशी है जी, अगर उनको पता लग जाए कि हमारा अगला जन्म और भी नीचे जाने वाला है तो सुख भी गया, खुशी तो छोड़ो, उसको किस चीज की खुशी है। एक व्यक्ति करोड़पति है, वो 5 साल करोड़पति ही रहता है, उसको खुशी होगी? जैसे कोई खीर खाने वाला हफ्ता भर खीर ही खाता रहे, उसको खीर अच्छी लगेगी या दाल अच्छी लगेगी? तो कहने का भाव यह है, खास नोट करने की बात है, संगम से इसका लिंक है। आप किसी दुकान पे सामान खरीदने जाओ, जब आप पैसे देने लगो वो कह जी हम एक तौलिया सबको फ्री दे रहे हैं, आपको तौलिया एक्स्ट्रा दे दे, तो खुशी तौलिये की होगी या खरीदारी की होगी? एक्स्ट्रा। तो खुशी तब होती है जब आपका कुछ एक्स्ट्रा ऐड होता है, वरना जो आपका है वो तो लेवल नॉर्मल हो जाती है। इसलिए संगम युग खुशी का युग है, दूसरे शब्दों में कहें चढ़ती कला का युग है, ऐड होने का युग है, जमा करने का युग है, और किसी युग में आप जमा नहीं कर सकते। इसलिए जब आपको पता लग गया कि देने में खुशी है तो आपको ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए कि नहीं, ज्यादा से ज्यादा खुशी होगी, ज्यादा से ज्यादा जमा होगा। इसके लिए ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, वो यही कहते हैं ना कि मनसा वाचा कर्मना, हर तरह का अकाउंट खोलो, सेविंग अकाउंट खोलो, कुछ भी देते ही जाओ, आपका अखंड लंगर लगा रहे देने का। तो मनसा से क्या देना और वाचा से क्या देना और कर्मना से क्या देना, बोलो जी, मनसा से क्या देना, हाँ? और वाचा से, टीचर्स को तो पता ही होगा, ब्रह्मा बाबा ने लास्ट शरीर छोड़ते समय तीन गिफ्ट दिए थे, तीन शब्दों के, वो क्या थे? मनसा से निराकारी, वाचा से निरहंकारी और कर्मणा से निर्विकारी। अब मनसा से निराकारी का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई संकल्प करना है, मनसा संकल्प करती है ना, तो निराकारी स्थिति में रह के संकल्प करोगे तो आपका संकल्प श्रेष्ठ होगा, क्योंकि है जरा जरा सी बात, उसमें जरा सा चेंज कर दोगे आप निशाने से इधर हो जाओगे। और बाबा कहते हैं तीनों इकट्ठे करने, ऐसे नहीं जब मनसा सेवा करो तो वाचा की आ जाए, नहीं मैं तो योग में हूं, नहीं। तो ये जो बाबा ने कहा हुआ कि लगातार, तो आप अनुभव करेंगे, जैसे बाबा ने कह दिया सब बच्चे मेरे दिल तख्त नशीन है, बच्चों के दिल में बाप और बाप के दिल में बच्चे, कह दिया ना, ठीक है, आपको अनुभव है कि आपके दिल में बाप आता है और बाप के दिल तख्त पे आप बैठे, अनुभव है जी, जरूर होगा ना, पट्टी कर रहे हैं। अब मुझे ये बताओ कि कुर्सी है, कुर्सी पर भी आप किसी को बैठाते हो या खुद बैठते हो तो देखते हो कुर्सी साफ है कि नहीं, नहीं तो साफ करते हो, और कोई साधु महात्मा आ जाए तो उस पर चादर डाल के बैठाते हो, कोई नेता जी आ जाए तो उसके सामने दिखावे के लिए भी साफ करके बैठाते हो, साफ कुर्सी। अच्छा, अब बाबा का दिल है, दिल तखत है, वो साफ होगा कि नहीं होगा, कितना साफ होगा? और कोई मैले कपड़े वाला जाके वहां बैठ जाएगा कि जब बाबा का दिल तख्त है, आप ही डरेगा, जैसे नारद बंदर देखता था, वो बैठ ही नहीं सकता। ये कपड़े की बात नहीं है, मन की बात है। अगर हमारे मन के अंदर व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, किस, और तीन चीजें हैं, ईर्षा बड़ी खतरनाक चीज है, हम कहेंगे मुझे कोई ईर्षा नहीं। अच्छा, ईर्षा की निशानी क्या है कि दूसरा थोड़ा आगे बढ़ेगा तो दिल में दर्द होगा, हैं? कि ये आगे क्यों बढ़ गया। पड़ोसी के घर में नई कार आ जाए, हैं? तो सारे खाना पीना छोड़ के ये नई कार कहां से ले आया, हैं? अच्छा अच्छा, और अगले दिन पड़ोसी के घर में पुलिस आ जाए, खुश, हाँ हाँ पता लगा नई कार कहाँ से ला। तो ये है नेगेटिव हैप्पीनेस आजकल। तो बीके में भी होती है, मान लो शिवानी है, शिवानी बहुत अच्छा स्पीच करती है, हम नहीं कर सकते वैसी, क्या है शिवानी, वो परमात्मा का ज्ञान तो देती ही नहीं है ना। अब बताओ ये क्या है भाई, देती है या नहीं देती, वो बेचारी इतने बीखे लोगों को, पर मैं उसके लिए ऐसा क्यों सोच रहा हूं, ईर्ष्या है ना अंदर, और तो कुछ नहीं है, कुछ नुक्स निकाल लेंगे। कहने का भाव ये है, ईर्ष्या उससे भी ज्यादा घृणा, घृणा यानी ये तो है ही ऐसा, ये तो यज्ञ के लिए बहुत डिसर्विस कर रहा है, इसकी ये बातें देखो। अब बाबा कहता है चलो सब कुछ है, पर वो है ना, आपका काम है उसको भी ठीक करना या उससे घृणा करना। अच्छा, उसने मेरी इंसल्ट कर दी। अब बाबा कहता ये और भी वंडरफुल बात है। तो जानकी दादी जी से किसी ने कहा कि दादी इसमें तो हर एक जानता है इसमें इतनी गड़बड़ है, मैं तो, आप कहते हो इसके लिए शुभ भावना रखो, मेरे अंदर तो निकलती नहीं शुभ भावना, क्या करूं? तो दादी ने कहा देखो इसलिए रखो कि तुमको देवता बनना, इसलिए तुम शुभ भावना नहीं रख रहे, उस पर कोई एहसान करना है या कुछ है, तुमको देवता बनना, और देवता शुभ भावना से ही बनता, अगर तुम शुभ भावना नहीं रखोगे तो देवता नहीं बनोगे। मेन बात यह है कि जो शुभ वाला है उसने तो शुभ ही सोचना है ना, शुभ वाले ने अशुभ सोचना ही नहीं। अगर किसी भी वजह से मैंने अशुभ सोच लिया, मैं तो गया, वो तो वैसे का वैसा रहा। तब बाबा कहता है कोई आपको तंग कर रहा है। अच्छा, सहनशीलता, तो तंग कर रहा है तो आपको सहनशीलता का मौका मिलता है कि नहीं, कर ले भाई तंग, जितना करना कर ले, थक जाएगा तो बता देना, तो आपको खुशी होगी, पता है तंग कर रहा है। अगर आपने कहा तंग कर रहा है तो बड़ी प्रॉब्लम है। अब मान लो कोई व्यक्ति, एक बार हुआ था, एक विदेश का बहुत बड़ा वीआईपी भाई माउंट आबू आया, किसी ने उसको कहा कि अरे ये तो कॉलेज है तुम्हारा शहर, आबू में यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में जाओगे तो बहुत 6 महीने में वो सीख जाओगे जो 6 साल में सीखते हो। वो आ गया। अच्छा, आया तो आबू में रिसीव करने वाला होता है ना, वो घंटी बजाते हैं, तो आया ही नहीं रिसीव करने वाला, वो तो नकी लेक में सैर करने गया हुआ था, बैठ गया, काफी देर बैठा रहा। अब उसके संकल्प चल रहे हैं, वो तो कहते थे माउंट आबू यूनिवर्सिटी है, यहाँ तो देखो मैं इतना बड़ा भाई, इतनी वहां सेंटर चलाता हूँ, मैं निमित्त हूँ, मेरे को कोई पूछ ही नहीं रहा। अब बेचारा उदास हो रहा है। अब सच्ची बात क्या है कि उनको पता था उसने आना है, वो बेचारे बैठे रहे, नाश्ता भी नहीं किया, उसकी लेट हो गया आना, तो वो कहते चलो आ जाएगा, उनके घूमने की आदत थी, वो घूमने चले गए, जूं ही वो गए वो आ गया। अच्छा, अब अगर वो ये सोचे तो बड़ा दिक्कत है। अगर ये सोचे हाँ यूनिवर्सिटी है, गेट पर ही मेरी परीक्षा हो गई, मैं देखता हूँ, कोई बात नहीं, ट्रेन भी तो लेट हो गई थी, प्लेन भी तो लेट हो गया था, यहाँ भी हो गया तो क्या बात है, तो खुश हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है ना कि मैं सहन शक्ति बढ़ा रहा हूँ या अपनी सहन शक्ति घटा रहा हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये सारा खेल है, आपको इसलिए दिया गया है, हर चीज में से आप कमाई भी कर सकते हो, दुआएं भी ले सकते हो और लेनी है। सेवा किस लिए करते हैं, सेवा में खुशी मिलती है और दूसरे का के साथ जैसे मीठा बोलना है। अब मीठा बोलने में कोई पैसा तो लगता नहीं, अब बाबा रोज मीठे मीठे बच्चे कहता है, हाँ? अब किसी को डायबिटीज है उसको मीठा लगता ही नहीं, अब क्या करें, स्पिरिचुअल डायबिटीज कहते हैं कि नहीं, उसको मीठा अंदर ही नहीं जाता। बाबा कहता है मीठे, वो कहता मैं तो महसूस ही नहीं होता मैं मीठा हूं। कारण क्या है कि अभ्यास नहीं करते। अगर ये सोचे बाबा मीठा कह रहा है, मुझे भी मीठा बोलना है, मीठा ही बोलना है, मधुरता एक बहुत बड़ा गुण है, ऐसी मुस्कुराहट है। अब बाबा कहता है कि मेरे बच्चों मेरी प्रत्यक्षता कैसे होगी, बाबा की प्रत्यक्षता बच्चों ने करनी है या बाबा ने करनी है, बाबा ने बच्चों की कर दी, अब मेरी प्रत्यक्षता कैसे होगी, तो बाबा की प्रत्यक्षता क्या है, बाबा की प्रत्यक्षता यही है कि जो दूसरा एक्सपेक्ट करता है कि भगवान के बच्चे कैसे होने चाहिए, हर वक्त हंसते हुए नजर आने चाहिए कि नहीं, मुस्कुराते हुए। बाबा कहते तुम्हारी मूर्ति है, द्वापर से बनी हुई है, अभी भी किसी बिरला मंदिर में चले जाओ कहीं तो आपकी मूर्ति क्या कर रही है, मुस्कुरा रही है ना, वो जोरदार हंसी तो रावण करता हा हा हा, लेकिन मुस्कुरा रही है ना, तो कितने लोगों की भावना पूरी होती है, आके सारी थकावट दूर हो जाती है। तो आप चैतन्य हो, आप मुस्कुरा नहीं सकते क्या, बहुत सीरियस लगते हैं। तो बाबा कहते हैं मेरे बच्चे को कभी सीरियस नहीं लगना चाहिए, जितना ज्यादा काम उतना ही ज्यादा हल्का मुस्कुराते रहना चाहिए, तो वो लोग देखेंगे देखो काम कर रहे हैं पर मुस्कुरा रहे हैं, ये है? कोई ये ले आओ, हाँ जी अच्छा, तो उसका नतीजा क्या होगा कि वो आपकी प्रत्यक्षता बाप की प्रत्यक्षता करेगा। मीठा बोलना बाप की प्रत्यक्षता, सीरियस चेहरा अच्छा नहीं लगता, किसी मूर्ति का चेहरा मंदिर में कोई आर्टिस्ट सीरियस बना दे तो वो मूर्ति वह काम ही नहीं आएगी। और ऐसे हम अगर सीरियस रहते हैं तो उस मूर्ति के आर्टिस्ट को लोग कहेंगे कैसी बनाई है, और हमें कहेंगे आर्ट ऑफ लिविंग इनको नहीं आता, इनको जीना आता ही नहीं। कोई बिना मुस्कुराहट के और वो भी बीके और सीरियस हो जाए, मान लो टिकट गुम हो गई, टिकट गुम हो गई या तुम्हारा खुशी भी गुम हो गई, ऐसा चेहरा बन जाएगा पता नहीं सज्जू की प्रॉपर्टी गुम हो गई, थोड़ी देर के लिए, उस वक्त ड्रामा भी भूल जाएगा, हैं हैं। तो बाबा उसका कारण क्या है? उसका कारण है मैं, ये रुमाल है, ठीक है। अगर मैं इसको मेरा रुमाल कह दूं तो ये भी गुम हो जाएगा, तो मैं कहूंगा मेरा रुमाल कहाँ गया, मैंने सीट पे रखा था। अब एक रुमाल आपको परेशान कर सकता है, मेरा जोड़ा तो। इसलिए भगवान कहता है ये मेरा शब्द निकाल दो, हम निमित्त हैं। और हर एक चीज का अभ्यास अथॉरिटी बनने का क्या मतलब होता है, आप उसको तपस्या भी कह सकते हैं। तपस्या क्या है? एक होता है त्याग, एक होती सेवा, वो तो कर लेते हैं। तपस्या, जी भट्टी में आ गए हम तपस्या कर रहे हैं, उतनी देर रहता है, खास ध्यान रखते हैं ना। भट्टी के बाहर निकलते हैं, देखो बोलना भी धीरे हो जाएगा, जूता भी धीरे से पहनेंगे, प्रेम से बोलेंगे, किचन की तरफ भी धीरे जाएंगे, भट्टी का असर है। लेकिन ये भट्टी दो चार दिन की थोड़ी है, कहेंगे अच्छा अगली भट्टी में आएंगे, इसका मतलब बस इसका थोड़ा टेम्परेरी असर है, नहीं। तपस्या का मतलब ये है, जो चीज आपको पसंद है, आपको खींचती है, उससे आप न्यारे बनो, और जो चीज आपको ना पसंद है उसके आप प्यारे बनो, तब है तपस्या। और तभी आपको अनुभव होगा, गर्मी आ गई, गर्मी बड़ी गर्मी है, पंखा बंद हो गया, कहीं तो क्लास में आते पहले देखते हैं पंखा कहाँ है, फिर उसमें बैठते हैं। तो हमारी तो अथॉरिटी बनना है, उसका प्रूफ क्या है? सफलता, सफलता, सफलता। लेकिन कौन सी सफलता? सफलता का मतलब ये नहीं है कि हम जीतें, हम विजयी बने, हमें फायदा हो, हमारा सम्मान हो, नहीं। बीके में सफलता की परिभाषा क्या है? उस्तुति और निंदा। आपको पता है, मैं अभी कहूंगा तो आप सुना दोगे फटाफट, आपको पता है ना उस्तुति निंदा के आगे क्या है, है ना? क्या है, हाँ? उस्तुति निंदा के आगे क्या है? उसकी निंदा, हानि, लाभ, जय पराजय, मान अपमान में समान। इसको कहते हैं अथॉरिटी। आपकी उस्तुति हो रही है और आप बड़े खुश हैं, तो जब निंदा होगी तो आप उदास भी होगे। उस्तुति हो, उस्तुति को अंदर नहीं ले जाना, क्योंकि अब अगर आपने अभी अपनी उस्तुति ले ली तो बाबा कहता है कच्चा फल खा लिया। जैसे कोई दसवीं क्लास पढ़ के बाहर निकल आता है तो दसवीं रहता है सारी लाइफ। ऐसे मान लो किसी को सेंटर मिल गया, किसी को बिजनेस में लाभ हो गया, किसी को कार मिल गई, किसी में अच्छा, तो अगर उसको स्वीकार कर लिया तो आप, बाबा कहता तथा अस्तु, शिव के लिए मशहूर है तथा अस्तु, भस्मासुर ने कहा मुझे राख की तथा अस्तु, पर उसको पता ये तथा अस्तु का नतीजा क्या होगा। तो अगर आपने अपनी प्रोग्रेस को रोक लिया किसी भी लेवल पर, आपने समझा बस मेरे लिए तो ये, जैसे सन्यासी थे ना, एक सन्यासी दिल्ली में एग्जीबिशन में आया, वह अमेरिका की नई नई कार रखी थी, तो बोला ये कार मुझे मिल जाए तो मैं सन्यास छोड़ दूंगा, उसका अखबार में आया था। ऐसा नहीं हमको करना है, क्योंकि आप कच्चा फल नहीं खाना, आपकी स्थिति होगी और भी होगी, भगवान आपको विशेषता दे रहा है, उससे आपको स्तुति आपने स्वीकार नहीं करनी। इसी तरह आपकी निंदा होगी तो आपने वो भी स्वीकार नहीं करनी। क्या हो गया, ब्रह्मा बाबा की कितनी निंदा हुई, हम अपने प्रिंसिपल पे होते हैं तो निंदा होती है, अगर आप दूसरे के साथ दे दो आपकी निंदा बंद हो जाएगी। यही कहते हैं ना, दुनिया वाले बड़ी मौज में देखो हंस रहे हैं, हम बीके हैं, हमें विनाश का चिंता रहता। अब बकरा हंस रहा है कि कल मेरी गर्दन कटनी है, उसको पता नहीं है तो उसकी हंसी किस काम की है। इसलिए बाबा कहता है कि हर चीज में, जो मोटे रूप से आप ये समझ लो, अगर आपने अथॉरिटी बनना है, जो आपके पास है उसको समझना नहीं है, और जो नहीं है उसको धारण करना। अगर मैं पुरुष हूं तो बाबा कहता है तुम अपने आप को चतुर्भुज समझो, अगर मैं नारी हूं तुम अपने आप को चतुर्भुज समझो, अगर मैं धन से गरीब हूं तुम अपने आप को ज्ञान धन से अमीर समझो, अगर मैं धन से अमीर हूं तो समझो कि मुझे ज्ञान धन नहीं है तो मैं गरीब, जो है उसका उल्टा समझो। मैं बुजुर्ग हूं तो बच्चा समझो, बच्चा हूं तब बाबा कहता आप अथॉरिटी बनोगे, क्योंकि हमें ऑलराउंडर बनना, बाकी तो आप सब समझदार हैं। अब एक दो वासियां भी आ गई हैं, इसलिए मेरी अब छुट्टी करनी चाहिए मुझे। ठीक है, ओम शांति।